ओम शांति। मैंने सोचा यहाँ ईस्टर्न जोन की बहनें आई हुई हैं, कुछ महाराष्ट्र के भी बहन भाई आए हुए हैं, तो उनसे मिलने का कोई कारण बनाओ, है ना। तो इसीलिए मैंने बहन जी से रिक्वेस्ट किया था, जो हमारे कार्यक्रम सेवाओं के चलते हैं उनका सारा समाचार आपके पास आने वाले महीने का है। उसमें एक विशेष तरह का कार्यक्रम है, वह है कि प्रथम बार विदेशी और भारत वाले मिलकर एक जिसको कहते हैं इंटरफेथ, यानी धर्म वालों का आपसी सर्वधर्म डायलॉग पहली बार भारत में करने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम का बहुत समय से विचार चलता था कि भारत के भिन्न भिन्न धर्मों वालों का तो होता रहता है, क्यों नहीं एक सारे विश्व का यहां पर हो। उसका कारण ये था कि हम मानते हैं कि विश्व के सभी धर्मों के जो स्थापक हैं वो यहां से अंचली लेकर गए हुए हैं, ये तो हमें पता है, और अभी वो भिन्न भिन्न नाम रूप में हैं। तो उनका मधुबन में आना किसी तरह से हो, इस ख्याल से ये प्रोग्राम का विचार 2 साल से चल रहा था। विदेशी भाई बहनों का कार्यक्रम करने का तरीका दूसरा होता है, वो हमारे भारत की तरह स्लो स्लो लंबे लंबे कार्यक्रम नहीं पसंद करते, और हमारे भारत के महात्माओं को तो जितनी बड़ी सभा हो उतना उनका उमंग उनका श्वास है बड़ी सभा। तो हमारे विदेशियों का यह है कि मतलब की बात हो, इस वास्ते पहले ये हुआ, काफी समय से बात होती रही, फिर ये तय किया गया इस प्रोग्राम को विदेशी ही चलाएं। तब वो एग्री हुए इसकी विदेशी चलाएं, इसमें किस किस ने आना है वो भी विदेशी भाई बहन ही पास करें। तो लंदन इसका हेडक्वार्टर बना कि लंदन इसको चलाएगा, लंदन ही इसके पैम्फलेट छपवाएगा, लंदन से ही इसके निमंत्रण आएंगे, और टोटल सिर्फ 75 सारे विश्व के सिलेक्टेड धर्म नेता उसमें आएंगे। इसकी डेट्स हैं कि मधुबन में है इनकी 13 अक्टूबर से 15-16 अक्टूबर तक, लेकिन उससे पहले ये दिल्ली में आएंगे। 12 अक्टूबर को दशहरा है तो 10 अक्टूबर को दिल्ली में आएंगे, इस तरह से है, वो मैं डिटेल बताता हूँ। तो इस कार्यक्रम में भारत को भी कोटा मिला हुआ है कि भारत से जो मुसलमान हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, और कोई हिंदू भी एकाध, और भी छोटे छोटे मठ पंथों के लोग आ सकते हैं, लेकिन उसमें ये होता है ऐसे होने चाहिए जो आपस में मिलकर बैठ के बातचीत कर सके, और ऐसे होने चाहिए जो कि समझिए कि बहुत ऊंचे धर्म नेता ना हो, जो कि समझे कि हम किसी के साथ मिलना पसंद ना करें, ये ऐसे भी होते हैं, और उनको इंग्लिश आनी चाहिए क्योंकि सारी बातचीत इंग्लिश में होगी। अच्छा, इसी सिलसिले में मैंने क्यों बताया कि राष्ट्रपति जी से मिलना चाहते थे, वहां की बहनों ने कहा कि राष्ट्रपति जी से उनका कोई मुलाकात पहले से फिक्स हो जाए तब वो और उमंग से आएंगे। तो ये तय हुआ था मधुबन से डेट्स लेकर कि जब यहां उनका डायलॉग पूरा हो जाए उसके बाद वो दिल्ली आए और दिल्ली में राष्ट्रपति जी से भी मिले और उनका एक वहां प्रोग्राम हो अनुभव पर आधारित, ऐसा तय हुआ था। उस हिसाब से उनकी डेट बनती थी राष्ट्रपति से मिलने की 15 अक्टूबर तक, यहां था 16 को उन्होंने मिलना था। तो पता लगा कि राष्ट्रपति का जन्मदिन 16 अक्टूबर को होता है और वो उस दिन दिल्ली में नहीं रहता, तो हमने तो अपनी डेट्स इस तरह बना ली थी। तो अब उसको कैसे मिलाया जाए, तो ये फिर फॉरेनर को कहा गया कि विचार तो ये था कि यहां से अनुभव करके वो मिले, लेकिन ये नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा पहले उनको वहां मिला दिया जाए, बुला, क्योंकि उसके नाम से वो खुश होते हैं। अभी महिलाओं का भी हुआ था रशिया वाली का बहुत बड़ा, तो उन्होंने भी यही कहा था, हमें राष्ट्रपति से मिला दिया जाए, तो वो बहुत खुश हुए थे मिलकर। तो उसी अनुसार बातचीत लिखा पढ़ी करने में तो राष्ट्रपति का लेट हो जाता है, तो गुलजार दादी को लेकर हम राष्ट्रपति जी से टाइम निश्चित करके उनसे मिलने गए। तो असली ऑब्जेक्ट यही था कि इनके लिए टाइम फिक्स करें। तो जब हम जाते हैं तो राष्ट्रपति जी की कुछ खूबियां हैं, हालांकि वो पिछले 2-2.5 वर्षों में बहुत से धर्म नेताओं से मिलते हैं, यहां तक कि एक जैनियों ने मिलकर के युक्ति से उनके नाम से एक संस्था भी स्थापित कर ली है। आपको पता होगा कि 3 वर्ष पहले सूरत में उनका जन्मदिन मनाया गया था, जैनियों ने मनाया था, उसमें हमारी सुदेश बहन जर्मनी वाली और सरला दीदी अहमदाबाद वाली गए थे। तो उसी वक्त भी जैनियों ने ऐसी युक्ति करी कि जी आपके नाम अंडर एक संस्था चलनी चाहिए, कुछ नियम बना लिए, और वो संस्था जैनियों ने स्थापित कर दी, उसमें हमको भी जाना पड़ता है। अच्छा, तो इसी तरह से अब तब से लेकर जैनी इतने चतुर हैं, उन्होंने 2-3 प्रोग्राम तो राष्ट्रपति भवन में ही रखवा दिए उसी संस्था के अंदर, और उसमें सारे भारत के अच्छे अच्छे नेता जाते हैं। फिर भी राष्ट्रपति के मन में ब्रह्मा कुमारी इसके लिए एक बहुत विशेष स्थान है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और उस स्थान को कायम रखने के लिए भी हमें उससे मिलते रहना होता। तो जब दादी जी को लेकर हम गए तो कोई उनसे मिल रहा था राष्ट्रपति से, जब वो पूरा होता है तो आमतौर पे कहते हैं चलो अब आपका नंबर आ गया। तो नंबर आता है तो जितने भी मिलने वाले होते हैं बड़े से बड़े भी, वो बहुत तेज स्पीड से जाकर उसके कमरे तक जाते हैं। लेकिन जब उन्होंने कहा कि दादी गुलजार को आपका टाइम हो गया, तो मैंने देखा उनकी ना तो स्पीड तेज हुई कि भाई राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति ठीक है, अपने ही रॉयल्टी से वो चलती है मिलने के लिए। ये मैंने मम्मा में भी एक बार देखा था कि मम्मा की ट्रेन की हरी झंडी हो गई थी, और हमने कहा मम्मा आपकी ट्रेन, और मम्मा दृष्टि दे रही थी दिल्ली स्टेशन पर, मम्मा की स्पीड में नॉन के दृष्टि देने के टाइम में कोई फर्क नहीं आया। खैर वहां पहुंचे तो पहला काम राष्ट्रपति ये करता है कि अपनी सीट छोड़ के गुलजार बहन को बिठा देता है, और किसी महात्मा के लिए वो ऐसा नहीं करता, खुश हो जाता है और वहां उनको बिठा देता है। ये एक वंडरफुल बात है। अच्छा, उसके बाद बोला कि व्हाट इज द मैसेज फॉर, व्हाट इज द मैसेज, हमेशा पूछता है मैसेज क्या है, देश के लिए क्या मैसेज है। तो दादी जी ने कहा कि आप जानते हैं आजकल का वातावरण, तो जब तक आध्यात्मिक जागृति की कोई युक्ति नहीं बनती तो देश की दशा तो ऐसे ही रहेगी। तो वो बहुत तेज दिमाग का व्यक्ति है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है। तो उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि अगर देश के राजनीतिज्ञ ठीक हो जाएं, तब ये कुछ सुधार हो सकता है। तो ये भी बोला कि आप लोकसभा के स्पीकर के पास जाओ, मिलो हमें, कहता है, और उसको कहो कि पार्लियामेंट को आपकी शिक्षा की जरूरत है। उन दिनों ये लोकसभा का स्पीकर बहुत तंग था, आजकल भी आप अखबारों में पढ़ते हैं, है तो वो कम्युनिस्ट लेकिन कहता है मेरा जी करता है मैं छोड़कर चला जाऊं, भाग जाऊं, किस तरह ये व्यवहार करते हैं। तो हमने कहा जी ऐसा है कि लोकसभा के स्पीकर को हम मिले, फिर वो हां करे ना करे पता नहीं। फिर राष्ट्रपति बोला कि सारे भारत में लगभग 3,500 लोग ऐसे हैं जो देश को चलाते हैं, उसमें से ज्यादातर तो दिल्ली में है 2,500 के करीब, और बाकी सभी देशों के प्रांतों के स्टेट्स के कैपिटल में है। इनको किसी तरह से चेंज कर दिया जाए तो सारा समाज सुधर सकता है। उनका मतलब था ये असेंबलियों के और पार्लियामेंट के। हमने कहा आपका भाव तो ठीक है, ये बाबा कोई दिन ऐसा लाएगा, कुछ असेंबलियों में हो रहा है। फिर बोला कि जज जो है ना, जज तो जजिस के लिए अभी तक लोगों के अंदर कुछ भावना है, तो आप कम से कम जजिस से शुरू करें। और मुझे पता है कि कहीं बोला राजस्थान में कहीं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जजिस की, मैं चीफ जस्टिस को बोलूंगा, ایسے کہتا رہا. ہم نے کہا اچھی بات ہے. پھر بولا میرے لیے کیا میسج ہے؟ تو دادی جی نے کہا کہ پتہ نہیں وہ میسج لے کے گئی تھی یا کیا تھا. دادی جی نے کہا کہ بابا نے کہا ہے, پہلے ان کی طرف دیکھا تو اس کے ماتھے میں تین لکیریں ہیں. تو دادی جی نے کہا تو آپ کے مستک میں تین لکیریں ہیں, جیسے شیولنگ پر تین لکیریں ہوتی ہیں. تو سوچنے لگا, اس کو شیشہ تو نہیں تھا سامنے لیکن سوچا. پھر دادی جی نے کہا یہ تین لکیریں سدھ کرتی ہیں کہ آپ لکی ہو, لولی ہو اور لافل ہو. کہتا اچھا. تو دادی جی نے کہا لکی ہو؟ میں نے کہا لکی تو آپ ہیں ہی, کہ آپ دیکھو آپ کہاں سے آپ کو راشٹرپتی کا پد ملا ہے. پھر دادی جی نے کہا لولی ہو, آپ بابا کو بہت پیار کرتے اور بابا بھی آپ کو بہت پیار کرتا. پھر بولا لافل ہو, کیونکہ آپ مریادوں کو توڑتے نہیں ہو, مریادا کے انوسار سب کام کرتے ہو. اس کے لیے مشہور ہے کہ اس نے راشٹرپتی میں آنے سے بھون میں سارا اس کا حلیہ بدل دیا. جو لوگ مفت کا کھاتے ہیں یا اس کے رشتے دار آ جائے, سب اس کا سٹاف بتاتا ہے کہ یہ بہت اور طرح کا راشٹرپتی ہے. رات کو 8-9 بجے تک سرکار کا کام کرتا ہے, 9 بجے سے لے کر 1 بجے تک سائنٹسٹوں سے ملتا جلتا ہے. اچھا, پھر دادی جی نے کہا آپ کو پتا ہے کہ یہ تین بلیسنگ آپ کے پاس کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ آپ کے پاس ادھیاتمک ستا بھی ہے, آپ کے پاس وگیان ستا بھی ہے, اور آپ کے پاس راج ستا بھی ہے. یہ تین ستائیں اور کسی کے پاس کٹھی نہیں ہوتی ہیں, اور سچ مچ اس کا ایسا ہی ہے. وہ ویکتی برہمچاری ہے, مسلمان ہوتے ہوئے بھی ویجیٹیرین ہے, اور گیتا تک کو پڑھتا ہے. تو ایسا تو ہے. اچھا, پھر بولا خوش ہوا, پھر بولا چلو باہر چلتے ہیں. تو اس کے کمرے کے باہر ایک جگہ بگیچہ ہے جس میں وہ بیٹھتے ہیں, مغل گارڈن کا. وہاں گئے تو وہاں جا کے تھوڑی دھوپ تھی, تو وہ چھتری لے آئے اس کے جو انسان آدمی ہے. تو بولا وہ دیکھو, وہ میں نے ایک جھونپڑی بنائی ہے, اس میں میں میڈیٹیٹ کرتا ہوں جا کے. تو آشا بہن نے کہا چلیے ابھی دادی جی کے ساتھ وہاں میڈیٹیٹ کرتے ہیں. کہتا نہیں دھوپ ہے, دور ہے, دادی جی کو چلنا پڑے گا. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے اسی استھان پر پچھلی باری بھی جب اس سے ملنے گئے تھے تو وہاں وہ کھڑا تھا, اس وقت اتنا دھوپ نہیں تھا. تو کیا ہوا, کھڑے ہوئے کچھ فوٹو والے فوٹو لینے آ گئے, تو وہاں ہی کرسیاں لگا کے وہ بیٹھا تھا دادی جی سے بات چیت کرنے. تو کیا ہے, اس کا آبزرویشن بڑا تیز ہے, ویگیانک ہے. تو کہتا ہے دیکھو وہ جو پنچھی ہیں وہ جلدی چل چل کے سمیپ آ رہے ہیں. دادی جی کو بولا وہ دیکھو وہ بڑے خوش ہیں, سمیپ آ رہے ہیں. تو ہم نے سچ مچ دیکھا بہت سارے چڑیاں کبوتر تھے, وہ ایسے ایسے چل کے دور سے نزدیک آ رہے تھے. پھر کچھ ہوا چل رہی تھی تو کہتا ہے آج پیڑ پودے بہت خوش ہیں, دیکھو سب جھوم رہے ہیں. اچھا, اتنے میں کیا ہوا تھا, ایک شہد کی مکھی آ کے گلزار بہن کے ادھر ادھر گھومنے لگ گئی. اچھا, تو راشٹرپتی خود اس کو اڑانے کے لیے کوشش کر رہا تھا. تو میں نے بولا یہ ایسے ہی آئی ہے, رسپیکٹ دینے آئی ہے, چلی جائے گی, آپ پہ چلی جائے گی, وہ تو ہوتا ہی ہے. تو 2-4 چکر لگا کے وہ چلی گئی تھی. تو پھر بولا اچھا دھوپ ہے تو اندر بیٹھ کے میڈیٹیٹ کرتے ہیں. اندر چلے گیا تو آشا بہن نے کہا کہ گلزار دادی آپ کو میڈیٹیٹ کرائے گی اور تھوڑا ہم بولیں گے بھی. تو بیٹھ گیا, بلایا اپنے آدمی کو, اندر کوئی نہ آئے. تو ہم نے دیکھا کہ 2-3 منٹ میڈیٹیشن کرائی, وہ سناٹا ہو گیا زبردست, اور اس میں رونق آتی گئی آتی گئی. پھر بہن جی آشا بہن نے کہا آپ دادی کی آنکھوں میں دیکھیے, پہلے ہم نے ایسے کبھی نہیں کہا تھا. تو درشتی لینے لگا تو اتنا اس کا بدل گیا سارا رخ, جیسے کوئی شکتی سے بھر جائے. اس طرح ہو کر کے پھر اس کی میٹنگ پوری ہوئی. تو یہ ہم نے آپ کو سنانا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سماچار تو آپ کو بتایا ہی ہے کہ آپ یہاں کئی زون والے ہیں, کہ کسی بھی زون میں کوئی ایسا دھرمک نیتا جو انگلش جانتا ہو, اچھا پربھاوشالی ہو, اور مل جل کے ڈائلاگ کر سکتا ہو, اس کے نام آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں، وہ ہم لندن سے پاس کرا کے ان کو کریں گے۔ ابھی تک ایک راما کرشنا مشن والے، ایک بھائی فیت والے اور ایک سوامی جی مہا میسور میں جہاں گلزار دادی گئی تھی، اس کے ایک سوامی ہیں، وہ انگلش نوئنگ ہیں اور بہت پربھاوشالی ہیں، ان کا بھی اس جینیوں میں نام تھا۔ تو تین ہم نے فکس کیے ہیں اور ابھی کرنے ہیں۔ اوم شانتی۔